पाँच दस खरीद लो, खत्म होने वाला है बहुत थोड़ा बाकी। मैं तो बंगाल में
पर कहते प्रविज्ञा मतलब क्या होता है। ये प्रवज्ञा शब्द को यहाँ पर व्याख्या करते जा रहे हैं। प्रवज्ञा क्या चीज होती है और उन्होंने क्यों लिया, किस लिए लिया और उनको लेने से क्या होना है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने श्रवण किया था। प्रवज्ञा मतलब कहते हैं, जबकि हम थोड़ी सी पहले आपको सुना देगा, हमेशा दूसरा पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए प्रवज्ञा मतलब कहते हैं, जबकि वास्तविक रूप में जीव जब साधन करे, साधन करते करते ये जो अंधकारमय जो संसार है, संसार एक अंध कुआ का सदृश है, जबकि जीव वास्तविक रूप में हतगृहस्थ होकर जब भजन करता है, धीरे 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 उसको हृदय का ज्योति धीरे धीरे जगते जग मतलब जागृत होती है, धीरे धीरे उसका आत्मवृद्धि प्रकाश होती है, प्रकाश होते होते एक दिन स्वाभाविक रूप में ये संसार मायामय है, संसार कभी जीव को सुख नहीं देता है, संसार का परिणाम दुख है, उसको हृदय में के वस्तु उपलब्धि होता है वो होएगा ही। क्यों हम लोगों ने श्लोक सुना था भागवत का, भक्ति परेशान विरक्ति, भक्ति ठीक ठीक अगर कोई करेगा उसके हृदय में जरूर भगवत अनुभूति होएगी, अगर ठीक ठीक से करेगा। और भगवत अनुभूति होने पर वह विश्व अनुभूति प्राप्त करने का साथ साथ स्वाभाविक रूप में उसको विषय का जो सुख है वो तुच्छ हो जाती है। तुच्छ होने पर वे क्या करता है, ये संसार को छोड़ करके वो भक्ति की तरफ ही दौड़ता है, फिर ये संसार उसको अच्छा नहीं लगता, फिर धीरे धीरे इसको माया छोड़ने लगता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सन्यासी दो तरह का है, एक तरह का सन्यासी है विदित्सा और एक विद्वत, ये सन्यासी दो तरह का बताया। और श्रीमद् भागवत में बताया एक धीर सन्यासी और एक नरोत्तम सन्यासी, ये दो तरह का सन्यासी बताया है। यहाँ पर कहते हैं, कहते हैं यहाँ पर जो विविधता सन्यासी है, जो विविध सन्यासी है, ये जीव संसार का नश्वरता को समझ करके वे साधारण रूप में जैसे हमारे एक दंडित त्रिदंड सन्यासी ग्रहण किया जाता है, जैसे वैदिक वेद हमारे यज्ञों को द्वारा हवन को द्वारा जैसे अनुष्ठान करके जैसे हमारे संप्रदाय में ये सन्यास किया जाता है, ये विविध सन्यासी विविधता। और जो विद्वत सन्यासी है कहते ये अनुराग सन्यासी, कहते हैं वे अनुराग वसत सन्यास लेते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं श्रील रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य किससे सन्यासी ग्रहण नहीं किए, उन्होंने जब आए सुना गुरु जी का, जिनको उन्होंने गुरु रूप में वर्णन किया था, सुना गुरु जी का शरीर अस्वस्थ है, वो आकर के देखते हैं गुरु जी का अंतर्ध्यान है और उनको तीन आंगुल बंद है और दो आंगुल खुला है, वे गुरु जी का भावना को समझ जाते हैं, गुरु जी का हृदय में क्या लिप्सा है। क्यों कहते जब कोई सत शिष्य होता है गुरु जी को जो भावना अपने आप शिष्य को हृदय में वो अपने आप प्रतिफल होता, अगर सत शिष्य होएगा कहते गुरु जी का जो इच्छा है वो अपने आप उसके हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होता है। इसलिए रामानुजाचार्य को पता चल गया हमारे गुरु जी को तीन काम बाकी है, तो उन्होंने वहाँ पर तीन प्रतिज्ञा करते हैं। पहला प्रतिज्ञा किया कहते गुरु जी का जो ब्रह्मसूत्र को पर जो कुछ भाष्य लिखना था वो लिख नहीं पाए, इच्छा था वो ब्रह्मसूत्र को पर कुछ लिख ये मायावाद को खंडन करें, लेकिन वो इच्छा उन्होंने पूरा नहीं कर पाए। रामानुजाचार्य ने कहा मैं जरूर गुरुपाद वर्म का ये इच्छा पूरा करूँगा, जगत में शुद्ध भक्ति को मैं प्रचार करूँगा और मैं संन्यास ग्रहण करूँगा, ऐसे उनको तीन उनको ये है। ऐसे करते करते एक प्रतिज्ञा करते करते एक अंगुल खुल गया, दो प्रतिज्ञा करते करते दो अंगुल, तीन प्रतिज्ञा करते पूरा अंगुल, पूरा पांच अंगुल खुल गया। जितने वहाँ पर व्यक्ति थे देख करके स्तंभित हो गए। कहते हुए गुरुपाद पद्म को रख करके सामने वहीं पर उन्होंने प्रतिज्ञा लिया, गुरु जी से जैसे मंत्र लेते हैं, उनको दंड लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, उन्होंने वैसे ग्रहण नहीं किया। कहते यहाँ पर जो रामानुजाचार्य जो सन्यास ग्रहण करते हैं कहते वह सन्यासी विद्वत सन्यासी है, विद्वत रूढ़ी के सन्यासी, जैसे हमारे एक अनुष्ठान, इसलिए अनुष्ठानिक दीक्षा यहाँ पर जो सन्यास है द्वितीय दिल। दूसरा उदाहरण कहते हैं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु वे जो सन्यास ग्रहण करते हैं, ये हमारे किससे सन्यास ग्रहण करते हैं, वो केशव भारती से। कहते किसको अवलंबन करके, कहते हैं वो केशव भारती सन्यास ग्रहण नहीं करते, वो लेते हैं ईश्वरपुरी को अवलंबन करते हुए। यहाँ पर कहते हैं प्रभुपाद ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी का शिष्य है, वो प्रेम लता की जो मूल अंकुर है, जो प्रेम लता की पहले तो भक्ति थी, लेकिन हमारी जो हमारे गौड़ीय परंपरा में जो प्रेम लता की जो पहले शुरुआत है, वो शुरुआत है माधवेंद्रपुरी से। इसलिए वो माधवेंद्रपुरी से धीरे धीरे वो ईश्वरपुरी के पास में आते हैं, और ईश्वरपुरी से श्रीमन महाप्रभु के पास में आकर के संपूर्ण रूप में प्रेम धर्म की संपूर्ण विकसता वही लाभ करती है। इसलिए यहाँ पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो विद्वत रूढ़ में संन्यास ले रहे हैं, वे अवलंबन किसको करके, कहते हैं कि तो केशव भारती को नहीं, कहते हैं ईश्वर को, ईश्वर का आश्रय करते हुए ऊपर एक आनुष्ठानिक रूप में, एक आनुष्ठानिक रूप में वो तो मायावादी है, केशव भारती उनसे क्यों ग्रहण करेंगे। इसलिए वो केवल ईश्वरपुरी अवलंबन है, केवल आनुष्ठानिक रूप में जो बाजी रूप में संन्यास ले रहे हैं केशव, ये भारत हमारे भारती से केशव भारती से, लेकिन ईश्वरपुरी से ही वे संन्यास ग्रहण कर रहे हैं महाप्रभु। अतः यहाँ पर उदाहरण देते हैं श्रीमद महाप्रभु जैसे यहाँ पर संन्यास ग्रहण
करेंगे।
इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं, कहते हैं ये जो विद्वतरणी जो दीक्षा है, कहते ये अनुराग की दीक्षा है, ये साधारण विद्वत दीक्षा साधारण दीक्षा नहीं है, ये केवल जीव अनुराग वश में, जबकि कृष्ण चरण में विशेष रूप में अनुराग होती है उस समय वो संन्यास लेते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, मुझे इतना बोला अब बोल दीजिए।
इनको बोलो,
आप बोलो, वो आपसे सीख लेंगे। वो प्रभु बोलते हैं लेकिन आप इसे डिटेल से बोलते हैं ना, वो डिटेल से ही बोलते हैं, क्योंकि प्रभु बन रहे हैं। अगर महाराज का आप जैसे, आप जैसे संगत किए हैं, आप ऐसा भी ऐसा बन जाए।
मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं, इसलिए ज़्यादा बोलनी पड़ती है, एक सेंटेंस में दो तीन का काम कर लेते हैं। सो फ्रॉम भागवतम he has taken a word from
who has taken a word
if I'll turn like this then I might my bag will be there anyway
who has taken a word
nahi theek aap apko hi bol rahe abhi thakur fine nahi karenge thakur abhi darwaza
prabhajya
prabhajya
prabhajya the word extracted from Srimad Bhagavatam it is called pravajya
pravajya
yeah pra p r a pravajya v a g y a in fact vajya means to move and pra means absolutely in its own form so the movement it is a prayer to his gurudev प्रेयर सुखदेव गोस्वामी जी प्रेयर कर रहे हैं क्या
नहीं सुध गोस्वामी
सुध गोस्वामी जी प्रेयर कर रहे हैं अपने गुरुदेव का इट इज प्रेयर बाय सुध गोस्वामी जी टू हिज गुरुदेव एंड ही इज ग्लोरीफाइंग हिज गुरुदेव दैट हाउ मच ही इज ग्लोरीफाइड दैट हीज मूवमेंट इज एब्सोल्युटली ऑन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म प्रकृष्ट रूप मीन्स वेन वन इज सिचुएटेड इन हीज ओन फॉर्म then he is called that he is established in prakashta roop prakashta roop
swaroop
swaroop
in yeah. the swaroop
ha huh?
in his swaroop
ha huh. original form in when one is situated in his original form then the word is used prakrist or prakrit or prakrist kya shabd bhi use prakrist 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 means established and situated in the original form so when one is situated in his original form and then he moves then his movement is called pravrajya so he is saying that his gurudev is so much elevated that he is established in his original form and his movement is absolutely original. He is so much potent that when he went to call his son Shukdev in jungle, at that time he entered into all the trees, and when he was saying Putra, my son, then each and every tree was also saying my son, my son. This was because of the mystic power of Srila Shukadeva Goswami, which he showed by entering in each and every tree. And though the tree is inert, but it became conscious and started speaking and calling the son of Vyasdev, my son, my son. We call that it was echo. Echo was coming from the tree.
Echo.
But,
Echo.
But here, in prayer, Sudha Goswami, he is not calling it echo. He is saying, by his mystic power, Gurudev entered into each and every tree, and the word which he was uttering, the same words being uttered by the trees. This means Gurudev is so much potent that he can enter into anything and can make even a inert thing, non-conscious thing also conscious. So my heart is totally unconscious, it is non-conscious. I pray to my Gurudev, similarly you enter in my heart and make it conscious like yours. So it is very wonderful prayer. Now Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada is explaining the, what does it mean by Prakasht Roop Pravarja. So in, then he is explaining sannyas. You know, Rasanand Prabhu is now giving us a very high light on the real point. These Babaji used to criticize that Srila Prabhupada sannyas is not authentic. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada sannyas is not authentic. Why it is not authentic? Because he has not taken from a living guru, he has taken it from the in front of picture of his Gurudev. But he is explaining here what does it, the sannyas mean. There are two types of sannyas. One is called Vivitsu sannyas and another is called Vidyatarudi sannyas. Vivitsu sannyas is when you take according to rules and regulation only. So one is not sannyasi by heart, but he has decided that he will adopt the path of renunciation. So by the decision he has gone to some sannyasi, and in some rules and regulation he has accepted sannyas and clothes and danda and this and that. This is called Vivitsu sannyas. It is called ritualistic sannyas only. It cannot be termed as real sannyas. The another sannyas, which is called Vidyatrodhi sannyas, is a real sannyas. In that real sannyas, it is outcome of one's real dedication and love and affection for Lord. When one is really in love with Krishna, then the fructification of sannyas comes. The real sannyas gets fructified. That is called Vidyatrodhi sannyas. So he was saying Vidyatrodhi sannyas. Now he is claiming that this Vidyatrodhi sannyas, he is quoting from that person who is really in bhakti, he will have two type of symptoms. Bhaktir pareshanubhav virakti, par ish anubhav, par ish realization of transcendental Lord will be in the heart of that person. First, pareshanubhav. Paresh Anubhav. Anubhav means realization, Par means transcendental, Ish means Lord. When bhakti comes in one's heart, he will get two symptoms, very obvious two symptoms at least. One, that he will realize the Lord in his heart, and then virakti. In consequence of that, he will get renunciation tendency from the world. And then he will give up the world without any pain and enter into realm of bhakti, devotional service. So he is now quoting how Ramanujacharya took sannyas. Ramanujacharya is the most brilliant example of Vidyat Rudi, the person who took sannyas Vidyat, in the order of Vidyat Rudi. He went to his Gurudev, and when he reached there, at that time, Gurudev went to his abode. He left that, his body. He was very much sad that he came to see his Gurudev and Gurudev left this abode. Then he found, while he was paying his obeisances to his Gurudev's body, that three fingers of that body were mera. Kaun hai?
Sudhana
Prabhu. देखो देखो शायद अब उनका नहीं होगा. मैं अभी
बोला एक पर कर
बस अब तुम होल्ड करो मैं आता हूँ. सो ही ओपन्ड हिज फिंगर व्हेन रामानुज सेड दैट आई टेक वो टू टेक संन्यास. अच्छा ये दो तीन तीन हो गया. आई टेक वो दैट आई विल टेक संन्यास. व्हेन ही सेड दिस थिंग हिज फर्स्ट फिंगर वॉज ओपन. Then he said that I will make a commentary, Vaishnav commentary. हाँ, सुधन्य प्रभु का है?
हैं? Here's about Ramanujacharya, about Vidyat Rudi Sannyas. When Ramanujacharya approached his guru had already left the body. But because he was in such a high level of realization that when Ramanujacharya approached the Guru, he saw that the hand, three fingers were closed and two were open. So the connection with the Guru was so strong that he could realize what is the instruction given by the Guru. The three closed fingers was first to establish a bhashya against Brahmavad, that is Mayavad. So the moment that realization came in the heart, even though the Guru was not there materially, we could see, but the finger opened. Second, he said to establish pure devotional service. The moment he thought of it, that he will establish the pure devotional service in this world, the second finger opened.
It confirmed.
Yes, so it confirmed. So people were so surprised. And the third was that he should take sannyas. So the third finger opened. So everyone was very surprised at how this has happened. So Prabhuji said that because the disciple was so realized, and even though Guru was not there, Guru was giving confirming the action taken by the disciple and decisions taken by the disciple, thus establishing the authenticity of Ramanujacharya action.
लेकिन वहाँ पर वो अप्रकट हो गए थे. लेकिन अप्रकट होने के बाद भी ये नियम होता है तो गुरु से डायरेक्ट लेना है. लेकिन इधर डायरेक्ट लिए तो लोग गुरु जी को अप्रकट को बाद में प्रतिज्ञा करते थे. लेकिन ये ई जो है ये अनुराग में संन्यास लेना है, इसलिए वो गुरु जी से डायरेक्ट नहीं लेने पर भी मंत्र और उनको जो भावना जो समझ जाते हैं, जो कि उन्नत अधिकारी होते हैं, कहते उनको कोई वैधी रूप में लेना पड़े. जैसे प्रभुपाद ने वो गौर कृष्ण फटो से दिए, उनको बेच लेना पड़ा कोई जरूरी नहीं. जैसे चैतन्य महाप्रभु.
सो प्रभु जी इज रिकन्फर्मिंग दैट दिस रिकन्फर्म्स द एक्शन ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. ही डिड नॉट टेक सन्यास फ्रॉम अ लिविंग गुरु, बट ही टुक द सन्यास फ्रॉम गौर किशोरदास बाबाजी महाराजेस फोटो. सो मेनी पीपल क्रिटिसाइज दिस, बट वेन वी आर फॉलोइंग द अनुराग मार्ग, वेन द पर्सन इज सो रियलाइज that the Vedi rules and regulation do not apply. So this was reconfirmed by Ramanujacharya. Even though the Guru was not present in this world, but still because the actions were taken in such a high level by the disciple, it was reconfirmed by raising the fingers of the Guru. So this reconfirms the action of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, who was criticized by the Babaji's. That he did not take sannyas from the living guru.
इसलिए उनको बुद्धि जो है जड़ा बुद्धि है, वो साधारण विचार से इसको बोलते हैं. लेकिन इन लोगों का जो आदर्श जिसे चाहिए वहाँ मिले, इसलिए बोल द आप लोग भी उनको फिर भी मत पढ़ना. अभी हमारे बहुत गौरी वैष्णव को शर्द करते हैं और उनको बुद्धि करने के लिए कोशिश करते हैं. इसलिए आप भी इनको समझा दो, आप लोग भी इस विषय में
So Prabhuji is warning us that we should also be very careful because we may hear such circumstances that the sannyas was unauthorized and these things, the Vedic rules and regulations do not apply to that level of sannyas. So Prabhuji is warning us again that we should be very careful while we are talking about our sampradaya with those Babajis. We should not come in their net.
Chaitanya
Mahaprabhu ka bhi to same. So Chaitanya Mahaprabhu also is also an example. The how Ramanujacharya had established it. Chaitanya Mahaprabhu also took sannyas from Ishwarpuri.
No. He took sannyas from Keshav Bharati. Keshav Bharati was basically Mayavadi, and therefore Keshav Bharati did not establish him in sannyas. To whom? To Mahaprabhu. So he said that he took sannyas, but his shelter was Ishwarpuri and Madhavendrapuri. Madhavendrapuri bought this bhakti ras. He was the first sprout of this bhakti ras, which was brought by Srila Mahaprabhu and onward our acharyas. So he took shelter of Ishwar Puripad, who was not on this abode. He took shelter of Madhavendra Puripad while taking sannyas. Keshav Bharati was only external, and his giving him sannyas was ritualistic, not real, because though it appeared he was accepting sannyas from Bharati, Keshav Bharati, but really he took sannyas from his Gurudev, as was the case of Ramanujacharya. So he took two type of sannyas at a time. Ritualistic sannyas he took from Keshav Bharati, and Vidyat Rudi sannyas he took from Ishwar Puripad. Prabhupada has taken sannyas in front of picture. It is not authentic according to our scriptures. That one cannot take. But he says that when one is established in Vidyat Rudi sannyas, he can do like this, like Ramanujacharya also did it. It is something like this in case of Chaitanya Mahaprabhu. One example struck in my mind, that there was a pitcher of nectar, and that nectar was coming from Ishwar Puripad, Madhavendra Puripad, and in that nectar, the real sannyas nectar was there, real, where the dedication of Lord is there. And when he won, he said that Vidyut Rodi sannyas means sannyas, no, feeling of renunciation in our heart when it comes because of our love for Krishna. That is called Vidyut Rodi sannyas. So that nectar was having that sannyas, which was coming, which was poured by Ishwar Puripad, Madhavendra Puripad, Ishwar Puripad, and that pitcher was there. Then Chaitanya Mahaprabhu said to Keshav Bharati, please hold this pot for some time and I will take this pot from you. So the pot which was filled by Madhavendra Puripad, the pot pitcher which was filled by Ishwar Puripad, and he gave him to hold it, and then he accepted and drank it. So it was like this. Okay. It is an example which I gave in my mind. It's not what he told like this. मैंने एक उदाहरण दिया इनको. मैं ऐसा लगा अभी अभी मेरे अंदर सुरना जैसी हुई कि जो एक सन्यास का अमृत था उसको माधवेंद्र पुरीपाद ने और ईश्वर पुरीपाद ने एक भर के दिया एक मटके में, और महाप्रभु ने केशव भारती जी को कहा जरा इस मटके को पकड़ना एक सेकंड, और पकड़ के जैसे कोई कपड़े पहनता हो या कुछ अपने को तैयार करता ना, उसके बाद कहा ये मुझे पकड़ा दो, और उसके बाद उस नेक्टर को पी लिया उन्होंने। तो केशव भारती का रोल इतना ही था कि उन्होंने थोड़ी देर के लिए उस मटके को पकड़ लिया था।
बात भी सही है, क्योंकि वो चेतन भागवत है ना, महाप्रभु खुद बोलते हैं मैंने रात में स्वप्न देखा है कि मंत्र एक दिव्य पुरुष ने दिया, उसको सुना तो सही सही की गलत है। तो महाप्रभु पहले उसको शिष्य बनाते हैं, पहले उसको कान में पहले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, मटका यही मटका है
महाप्रभु पकड़ा
दिया, उनसे ले
लिया उसी चीज को ध्यान में रखते हुए।
नहीं ये तो पहले से आदम किसी से भी बोला था, इसलिए इनको ही बता दीजिए। कोई कोई बाहर का व्यक्ति कभी कभी हमारे गौड़ीय संप्रदाय को कंफ्यूज कर देते हैं।
मैं इन्होंने बताया बाबा जी लोग हमारे प्रभुपाद जी को इसलिए कहते हैं कि आपका संन्यास मान्य नहीं है, क्योंकि आपने वैदिक प्रणाली से नहीं लिया, चित्रपट के आगे लिया गया संन्यास को वो नहीं मानते हैं। तो उसको महाराज जी ने भी रामानुजाचार्य एक एक बुक वो निकाली है उन्होंने महाराज जी ने, उसमें रामानुजाचार्य जी का ही बताया कि उन्होंने कौन सा वैदिक ढंग से संन्यास लिया था। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने उसे और क्लैरिफाई कर दिया, रामानुजाचार्य जी का उन्होंने दिया, प्रभुपाद जी ने दिया कोट, और उन्होंने महाप्रभु का दिया। और भी कोई है देखना, कोई और भी उदाहरण है
ये, इसलिए हमारे जो भागवत परंपरा है यही भागवत
भागवती है,
हमारे रूपांतर परंपरा है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी उन लोगों का नाम लिया हमारी परंपरा में, केवल जिन लोगों ने केवल रूपांतर धर्म को अपनाया है वो सभी का नाम लिया हमारे परंपरा में नहीं लिया, क्योंकि ये इसलिए हमारे क्योंकि कोई शास्त्र प्रमाण है गीता में भागवत में हर शास्त्र में इसका प्रमाण है, इसलिए जब जैसे जब लक्षण प्रोक्तम पुरुषांग वर्णाभिव्यंजकम जद अन्यत्र भी दृश्यते तो नहीं वो विभिन्न दृश्यते भागवत का श्लोक है, और भागवत में ये अनुराग पद्धति का है हम उसे प्रमाण देते हैं, और हमारे गीता में भी कृष्ण वही बोलते हैं, और हमारे महाभारत में भी है बहुत जगह में बहुत श्लोक है। और फिर उदाहरण देते हैं ये कहते हैं वशिष्ठ जी कौन सा ब्राह्मण थे, वशिष्ठ ब्राह्मण कुल से जन्म नहीं हुए, विश्वामित्र ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुए, गौतम जी ब्राह्मण कुल में नहीं हुए थे। जितने ऋषियों का नाम हमारे शास्त्र में आता है, हमारे ऋषि सिंह मुनि ये भी ब्राह्मण कुल में नहीं है, कोई एक ब्राह्मण कुल में नहीं है, कोई एक भी ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं हुए। उसका उदाहरण देते हैं सभी अंतज कुल में कोई मटका से कोई गंधर्वियों से कोई मृग से एक जन्म ग्रहण करते हैं, ये लोग जो ब्राह्मण तो ब्रह्मर्षि हुए हैं, ये जितने ब्रह्मर्षि हुए हैं अपना साधन का बल को द्वारा हुए हैं, तो भजन से हुए हैं, ये कोई लोग कहीं भी उनका नहीं आता है, एक भी ऋषि वो ब्राह्मण कुल में कोई एक ऋषि ब्राह्मण कुल में नहीं, सभी ऋषि की बहुत अच्छा पॉइंट है, कोई ऋषि वहाँ पर देखते कोई ऋषि भी एक ब्राह्मण नहीं है,
अच्छी बात है।
सभी अलग अलग ये कोई उर्वशी से हुए, कोई मटकी से हुए, कोई हिरण से हुए, कहते हिरण से ऋषि से हुए, इसलिए गौतम जी वो हुए मटकी से, और हमारे और एक हमारे कोई कलसी से, कलसी से कलसी से कलसी कोई कलसा था उसका अंदर से प्रकट हुए, और हमारे गौतम जी को हुए कोई गंधर्व से, कोई ब्राह्मण को।
अभी आपने गौतम जी मटकी से कहा,
वशिष्ठ जी, इसीलिए हमारे गौरी भंडार में गौरी भंडार में सभी दिया है,
अच्छा
सभी दिया है, कहीं भी जिस जितना ऋषि हुए कहीं भी कोई ब्राह्मण को नहीं उसे कर्म से हुए, ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए यहाँ पर उसको उदाहरण देते करते ये कहते हैं ऐसे कोई प्रमाण है तो प्रमाण देते हैं, कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी किसे संन्यास लिए, वो जन्म होते ही सीधा चल पड़े, वो सीधा जंगल में किसको तरफ से देखा नहीं, भैया कौन है पिताजी कौन है किसको देखा है नहीं, जन्म हुए 16 साल में बच जैसे हुए सीधा जंगल में चल पड़े, एकदम किसका तरफ में देखे ही नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते श्री लॉर्ड सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं अपेत कृत, यहाँ पर है ना अपेत कृतम
जो
गृह कातर आज भाव पुत्र पहले क्या है जम प्रवजंत मनपेत मपेत वो अपेत शब्द के लिए करें, जो अपेत कृत शब्द के लिए इतना उदाहरण दे रहे हैं, अपेत्य कृत है। कहते अपेत्य कृत मतलब क्या है, कहते जो कि वर्ण विधान को परिचय करके, ये जो कि वैदिक विचार को जिन्होंने परिचय करके सर्वोच्च रूप में जो अनुरागमयी अनुराग में लिप्त होकर के जिन लोग संन्यास ग्रहण करते हैं, इसका शब्द होता है अपेत्य। इसलिए लेते हुए यहाँ प्रमाण देते हैं कि जैसे सुखदेव गोस्वामी जो संन्यास ग्रहण करते हैं, ये विविध सब पथ को परिचय करके, विविध सब पथ होता है तो अनुष्ठान रूप में लेना, हवन करना, ये करना, लेकिन उन्होंने थोड़ी कुछ किया है तो सीधा पे चल पड़े। इसलिए कहते हैं ये पारमहंस पद्धति अवधूत पद्धति है, यदि अवधूत ये पारमहंस पद्धति है। इसलिए कहते इसका मतलब प्रभुपाद, अगर इसका मतलब ये नहीं समझो ये उन्होंने कोई विधि विधान को माना ही है, ए पागली। इसलिए उन्होंने कोई विधि विधान को माने ही नहीं, कहते सो बात नहीं, इसका अंदर में इंक्लूडेशन है, उसका अंदर में अंतर्निहित है, जो विधि भावना उसका अंदर में अंतर्निहित है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जिन लोगों ने इसलिए श्रीमद् भागवत में वो कुटीच बौद्ध हंस उसको बाद में होता है परमहंस। इसलिए शास्त्र में कुटीच बौद्ध हंस ये तीन स्टेज को बताया, ये जो परमहंस है यही विद्वत सन्यासी, यही विद्वत सन्यासी। इसलिए कहते हैं प्रभा जी कर परमहंस अधिका भागवत में जो दो तरह का सन्यासी बताया, एक धीर सन्यास एक नरोत्तम सन्यास। भागवत में धीर और नरोत्तम सन्यास के बात आता है, ये दोनों कहती है। लेकिन इसलिए कहते हैं विभिन्न शास्त्र में हंस परमहंस को दिखाया, लेकिन श्रीमद भागवत में क्या दिखाया, वहाँ पर परमहंस वस्त्र दिखाया, वहाँ पर धीर और नरोत्तम सन्यास का बात
यहाँ परमहंस है।
इसलिए वो परमहंस मतलब होता है अनुराग, और जो हंस ये कुटीचर कुटीर कुटीर बांध करके एक जगह में रहना, एक जगह में कुटिया बांधा वहीं पर रहे, और बहुत तक जब होते हैं बहुत सारी जगह पर पानी पीना है, यहाँ रहना वहाँ रहना वहाँ रहना है। जब वे हंस होते हैं दूध मीर को दुनिया जिनको अच्छे वस्तु को सार वस्तु को ग्रहण करते हैं, जहाँ पर असार वस्तु को छोड़ देते हैं। जब परमहंस ये सब हो गया, ये भी वैदिक अंदर भी जैसे हम लोग समझ करके हाँ ये सारे असारे, लेकिन जो परमहंस वस्त्र प्राप्त करता है ना वो अनुराग है, उसमें अनुराग। फिर भागवत में परमहंस सन्यासी का बात जो भागवत में बताया सुखदेव गोस्वामी, और भी कहते भागवत में जो सन्यासी का सो तरह तरह का आता है, जो त्रिदंडी सन्यासी है, त्रिदंडी सन्यासी कथा आती है, तो कहते ये लोग तो परमहंस सन्यासी
है। इसलिए
यहाँ पर केवल सुखदेव गोस्वामी का दे रही है यहाँ पर, और कहते भागवत में केवल यहाँ पूर्ण दे दिया, नाम नहीं दिया है। एक तो सुखदेव गोस्वामी पहला ही प्रमाण है। इसलिए
अपने इन्होंने ऋषभ जी ने भी जब छोड़ के चले गए थे, एक तो सन्यासी का नाम किया था
ऋषभ जी, और हमारे कपिलदेव जी सन्यासी। इसलिए केवल यहाँ पर दे दिया भागवत में एक सन्यास का विवरण होता है। यहाँ पर अनुपेत अनुपेत शब्द देते हैं, कहते अनुपेत मतलब होता है अनुपेत अपेत कृत दो ही गाय का, इसलिए अनुपेत का अर्थ कहते हैं।
अव्यय क्या है, अनुपेत के क्या मतलब है ना, अनु योग से कोई है संधि से लिया है
बोल रहा। कहते हैं अनुपेत मतलब होता है उपनयन संस्कारहीन, उपनयन संस्कारहीन, इसका अर्थ कहते हैं उपनयन संस्कारहीन को वो अनुपेत शब्द कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं ये उपनयन संस्कार किसको होता है, कहते हैं ब्राह्मण बच्चों का। जैसे ब्राह्मण कुल में कोई जन्म ग्रहण किया, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी जब तक वो ये दीक्षा नहीं लेते हैं तभी तक उसको वेद में अधिकार नहीं होता है। वो ब्राह्मण कुल में है लेकिन वो उपनयन संस्कार उसको नहीं हुआ, कहते उसको भी ब्राह्मण पद में अधिकार नहीं मिलता है, वो वेद नहीं पढ़ सकता है। इसलिए जो दीक्षा विधान जैसे हमारे मंदिर में दीक्षा होता है ना अनुष्ठान रूप में जो दीक्षा होता है, उसको बाद में कोई ठाकुर घर में प्रवेश करता है, उसको पहले नहीं, ठाकुर सेवा को पहले उसको पहले नहीं होता है, रोसे नहीं बना सकता है, हमारे की गोविंद उसका नियम है, रोसे नहीं बना सकता है, ठाकुर घर में नहीं प्रवेश कर सकता है, ये सब नियम है जब तक उसको दीक्षा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ब्राह्मण बच्चों को दीक्षा दिया जाता है। इसलिए हम लोग अभी जो अनुष्ठान में करते हैं वैदिक इस शास्त्र का वैदिक विधान नहीं, हम लोग अभी उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन मतलब क्या होता है, कहते उप मतलब होता है समीप में, नयति मतलब होता है लेटन। फिर उपनयन क्यों करते हैं, कहते जो कि जीव को धीरे धीरे बहिर्वृत्ति बहिर्मुख वृत्ति को हटा करके धीरे 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 भगवान के पास में जो ले जाता है। वर्ण विधान उपयोगी क्रिया राहित्य ही अनुपेद शब्द उद्दिष्ट
You want translation? Can we?
साधारण व्यक्ति का धारण किया है लेकिन इतने बड़े वैष्णव क्यों वो सब किए,
एक तो यहाँ पे आज सबसे बड़ी चीज है कि हम ये समझते थे कि जब व्यास देवी ने हाफ पुत्र किया तो सब पेड़ों ने उनको क्या कहते हैं चिढ़ाने के लिए हाफ पुत्र हाफ पुत्र किया। ये 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 ईको थी, ईको का मतलब समझ रहे, ये गुंजान थी। लेकिन आज इन्होंने प्रार्थना में कहा कि आप अपनी यौगिक शक्ति से समस्त जड़ पेड़ों में घुस के उनको भी चेतन करके और अपने ही भावों के अनुरूप उनसे बुलवा डाले। ये विचार तो
था और प्रभुपाद ना उसको खोल करके इतनी सुंदर दे रहे हैं ना, अभी सुनने में आश्चर्य हो जाओ क्या इतनी ऊर्जा प्राप्त दे रहे हैं, बहुत ऊर्जा प्राप्त है जहाँ कभी सोचे भी प्रभुपाद के साथ दे रहे हैं, उससे भी विश्लेषण करके दे रहा
था
नहीं और भी वो बहुत अच्छा अर्थ।
In continuation of our earlier discussion, wherein it was told that Vidyut Rudi Sannyas means when one falls in love with Krishna, when he falls in love with Krishna, out of love when he renunciates everything, that is called Vidyut Rudi Sannyas. Example was given Ramanujacharya, then Mahaprabhu Sannyas, we have already discussed. Now he taking the example of Shukadev Goswami. Shukadev Goswami, the moment he took birth, he went into jungle. Before coming to this point of Shukadev Goswami, he mentioned one thing more, that in our scriptures, the importance is emphasized on the sadhan. Sadhan means cultivation of bhakti. Our all the sages, most renowned sages, they were not born in Brahmin family. Vishisht, Gautam Rishi, and he's naming what? Richa Singh. There are three, four, many rishis. They were
August,
born.
Rishi August. Vishwamitra.
They were born in not very high dynasty of Brahman. They were born in low type of families. But by their their parents were not from Brahman. Like Vishisht, he came out from a pitcher.
Pot.
Somehow or other, who was their parents is not even very well known like this. And one sage, his name was Rishak Singh. He was born from
deer.
So you must be knowing a very famous narration which he has not referred, Gokarna. He came from cow. Cow is a lower species, so not a Brahman.
No Brahman, lekin sabse vidvat Brahman.
But he all these sages are considered to be most renowned they are superior to all Brahmins also. They recited those shlokas which Brahmins used to learn even today. How could they come to that stage? They could come to that stage by their sadhana. So, main thing is attainment. What position you attain by your sadhana, not the ritualism. Ritualism is not the main thing. Only recitation of certain shloka is not important, but to attain anurag. So real sannyas is anurag mai sannyas. This is the Hindi word which does not have any
equivalent.
English equivalent. Real equivalent word. It does not have anurag mai sannyas, or which I say that the feeling of renunciation coming out of love for Mukund Krishna. Shukadev Goswami, when we are praying for him, Anupetya, he is saying there are in the scriptures four type of sannyasis they have been mentioned. Number one, Kutichak. Number two, Bahudak. Number three, Hans. And number four, Paramhans. Those after taking ritualistic, anusthanic, under some rules and regulations, sannyas, those who sit in a place, they are called Kutichak. And those after sitting at a place, they start moving from here to there, from one village to another village, they become Bahudak. And when they advance more to that stage that they can deduct correct and incorrect, good and bad, just like a Hans, Swan, when it drinks milk, it separates it from water. Its quality is that Swan can separate milk from water.